జయ గోపీ జనవల్లభ గిరివర ధారీ జయ గోపీ జనవల్లభ గిరివర ధారీ యశోదానందన వ్రజ జనరంజన యశోదానందన వ్రజ యశోదానందన వ్రజ జనరంజన యమునా తీరావనచారీ యమునా తీరావనచారీ ఆవ కుంజ విహారీ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय हरि नाम संकीर्तन की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सभी भक्तों का स्वागत श्रीमद् भागवतम कक्षा में। हम पढ़ रहे हैं अध्याय स्कंद 8 अध्याय 5 श्लोक संख्या 6 856 देवताओं द्वारा सुरक्षा के लिए श्री भगवान से याचना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय तस्यानुभाव कथितो गुणाश्च परमोदयः भूमान् रेणुंश विममे यो विष्णोर्वर्णयेद् गुणान् तस्यानुभाव कथितो गुणाश्च परमोदयः भूमान् रेणुंश विममे यो विष्णोर्वर्णयेद् गुणान् तस्यानुभावः कथितो गुणाश्च परमोदयः यो विष्णोर्वर्णयेद् गुणान् अनुभाव कथितो परमोदया मे तस्यानुभाव कथितो परमोदया स्यानुभाव कथितो च परमोदया स्यानुभाव कथितो स्वपरमोदया माताजी तस्यानुभाव कथितो च परमोदया शब्दार्थ तस्य वैकुंठ के रूप में प्रकट होने वाले श्री भगवान को अनुभाव महान कार्यकलाप कथित बताए जा चुके गुणा दिव्य गुण इच्छा भी परम उदया अत्यंत यशस्वी भौमान पृथ्वी के रेणुन कण सह जो कोई विममे गिन सकता है यह ऐसा पुरुष विष्णु भगवान श्री विष्णु के वर्णयेत गिन सकता है गुणान दिव्य गुणों को। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विविध अवतारों के महान कार्यों तथा दिव्य गुणों का उद्भूत विधि से वर्णन किया जाता है, किंतु कभी कभी हम उन्हें समझ नहीं पाते। लेकिन भगवान श्री विष्णु के लिए सब कुछ संभव है। यदि कोई ब्रह्मांड के सारे परमाणुओं को गिन सके तो वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के गुणों की गणना कर सकता है, किंतु ब्रह्मांड के परमाणुओं की गिनती कर पाना संभव नहीं है। अतः कोई भी श्री भगवान के दिव्य गुणों को नहीं गिन सकता। कृपया दोहराइए। यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विविध अवतारों के महान कार्यों तथा दिव्य गुणों का उद्भूत विधि से वर्णन किया जाता है, किंतु कभी कभी हम उन्हें समझ नहीं पाते। लेकिन भगवान श्री विष्णु के लिए सब कुछ संभव है। यदि कोई ब्रह्मांड के सारे परमाणुओं को गिन सके तो वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के गुणों को की गणना कर सकता है, किंतु ब्रह्मांड के परमाणुओं की गिनती कर पाना संभव नहीं है। अतः कोई भी श्री भगवान के दिव्य गुणों को नहीं गिन सकता। तात्पर्य, इस प्रसंग में श्री भगवान के जिन यशस्वी कार्यों का उल्लेख है वे जय तथा विजय नामक उनके निजी अंग रक्षकों को सनक सनंद सनातन तथा सनत कुमार नाम के महान ऋषियों द्वारा शाप दिए जाने के बाद दैत्य बनने पर घटित हुए। जय को हिरण्याक्ष के रूप में वराहदेव से युद्ध करना पड़ा और इन्हीं वराहदेव का वर्णन रैवत कल्प के संबंध में किया जा रहा है, किंतु यह युद्ध प्रथम मनु स्वयंभू के शासनकाल में हुआ। अतएव कुछ विद्वानों के अनुसार वराह दो हुए हैं, किंतु अन्यों का मत है कि वराह स्वयंभू मनु के राज्यकाल में प्रकट हुए और रैवत मनु के काल तक जल के भीतर रहे। कुछ लोगों को संदेह हो सकता है कि यह कैसे घटित हुआ होगा, किंतु उत्तर यह है कि कुछ भी घटित हो सकता है। यदि कोई ब्रह्मांड के परमाणुओं की गणना कर ले तो वह भगवान श्री विष्णु के गुणों को गिन सकता है, किंतु न तो कोई ब्रह्मांड के सारे परमाणुओं को गिन सकता है और न श्री भगवान के दिव्य गुणों को ही। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय श्लोक संख्या 2। यो वा अनंतस्य गुणान अनंतान अनुक्रमिष्यान् सतु बाल बुद्धि रजांसि भूमेर गणयेत कथांचित कालेन नैवाखिल शक्ति धामना। तो यहां बताया जा रहा है कोई भी anyone trying to enumerate or describe fully the unlimited qualities of the unlimited supreme lord has the intelligence of a foolish child। ye milta julta hai ki agar koi soche ki main bhagwan ke anant gunon ka varnan kar sakta hu to wo ek murkh balak ke tulya hai। agar aisa ho bhi jaye koi genius koi vyakti aisa har ek jo parmanu jitne kan hai is srishti mein uski ganna kar bhi le लेकिन फिर भी वो भगवान की अनंत लीलाओं की गणना करने के लिए सक्षम नहीं है। ये राजा नीमी को बताया जा रहा है, तो सिमिलर है। सो वैशाषिका प्रभु जब पुस्तक वितरण का सेमिनार करते हैं तो वो बताते हैं हमेशा कि किसी को आप ग्रंथ देते हो तो उसको अगर ये समझ में आ गया कि इसमें मेरे लिए क्या है, व्हाट इज इन इट फॉर मी, मेरे लिए क्या है इसमें, तब तो वो आपका किताब ले लेगा। लेकिन अगर उसको लगा कि आप केवल धक्का मार रहे हो जोर से, तो वो इतना प्रभावित होके नहीं लेगा। तो इसी प्रकार ये शास्त्र के संदेश जो हैं, वो भी इसमें हमारे लिए क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। हम कथा सुनने में आते हैं, इसलिए इतनी भारी मात्रा में लोग उपस्थित हैं यहाँ, और भगवान में रुचि है, भगवान की लीला सुनना चाहते हैं। लेकिन अगर ये समझ में आ जाएगा कि इसमें मेरे लिए क्या है, तो हमारा उत्साह और दृढ़ होते जाएगा। ये तो जैसे हम देखते हैं सुबह जब 3:30 बजती है तो एक अलग ही संघर्ष शुरू हो जाता है अगर वो समझ नहीं है तो। लेकिन जिनको ये समझ में आ गया है कि प्रातः काल क्यों उठना है, गुरु को क्यों नमन करना है, भक्तों को क्यों नमन करना है, तो फिर 3:30 बजने का हम राह देख रहे होते हैं कि घड़ी आगे बढ़ क्यों नहीं रही है। कई लोग 2 बजे उठ के बैठ जाते हैं, बोले जल्दी जाना है, कब प्रभुपाद जी का दर्शन होगा समाधि मंगला आरती में। सो मुख्य मुद्दा ये है कि वी शुड अंडरस्टैंड व्हाई वी आर डूइंग थिंग्स। तो ये भगवान की जो विभिन्न लीलाएं हैं, इसका हेतु यही है कि हमको समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भगवान अनंत है, अनलिमिटेड है, ही कैन डू एनीथिंग, इसमें संशय नहीं होना चाहिए, कोई डाउट की। तो हर लीला, हर स्कंद, हर श्लोक, हर शब्द का हेतु यही है। दिस इज द ऑब्जेक्टिव, टू अंडरस्टैंड दैट कृष्ण इज द सुप्रीम प्रोवाइडर, कृष्ण इज द सुप्रीम मेंटेनर, एंड वी हैव टू सरेंडर टू द लॉर्ड। अगर ये पूरी कथा समझ में आ जाती है तो हर पन्ने में यही दिखाई देगा, यही है शास्त्र में हमारे लिए, यही भगवान हमको समझाना चाहते हैं कि हम उनकी शरण में चले जाएं। और कोई हमारे हितेशु नहीं है इस दुनिया में, देयर इज नो बडी थिंकिंग टू सेव अस बट टू एक्सप्लॉइट अस। बाकी पूरी दुनिया की रचना शोषण करने के लिए हुई है, सुरक्षा देने के लिए कुछ नहीं बना है इधर, सुरक्षा देने के लिए केवल ये शास्त्र हैं, गुरु, साधु और शास्त्र। तो कितना कंफ्यूजिंग प्रेजेंटेशन ऐसे देखें तो इसको, कि वरादेव स्वयंभू मनु में आ गए, फिर उसके बाद रैवतक मनु, तो 5 मनु 5वें 6ठे नंबर पे आता है, और एक मनु का अवधि कितना है, एक चतुर्युग मतलब 43 लाख साल, और वो 72 बार हो जाता है, राइट, दिस इज हाउ वन मनु इज काउंटेड, 72 टाइम्स 1 चतुर्युग, तो 43 लाख्स इंटू 72 टाइम्स इज 1 मनु। तो बोलते हैं वो कोई बोल रहा है स्वयंभू मनु में आया है, कोई बोलता है रेवतक मनु में आया है, कोई बोल रहा है स्वयंभू में आया है और तब तक पानी में रहे और रेवतक मनु तक रहे, तो ये हमारा दिमाग का ढक्कन क्या बोलता है, ये क्या सब फालतू की बातें लगा रखी है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कुछ भी घटित हो सकता है, नो डाउट, यू शुड नॉट हैव एनी डाउट, एनीथिंग कैन हैपन, कृष्णा वॉन्ट्स एनीथिंग कैन हैपन। तो एक छोटा उदाहरण हमने सुना हुआ है, वो मोची और ब्राह्मण, कॉबलर एंड ब्राह्मण, ये उदाहरण हमने बहुत बार सुना है कि नारद मुनि मिलते हैं मोची को और मोची बोलता है आप जा रहे हो भगवान को तो मेरा प्रणाम बोलना और बताना मुझे क्या चल रहा है उधर, मेरा कब मुक्ति होगा, भगवान को मिलेंगे, अगर आप पहुंच जाओ वैकुंठ तक तो मेरे ब्याप पे पूछ लेना कि मेरा कब मोक्ष होगा। तो नारद जी पहुंचते हैं, भाई प्रश्न जब पूछते हैं तो बोलते ब्राह्मण का तो अभी बहुत जन्म बाकी है लेकिन मोची तो इसी जन्म में आ जाएगा मेरे पास। तो नारद जी सोचते हैं ऐसा कैसे, ब्राह्मण आपकी पूजा में लगा हुआ है और ये तो मोची तो कुछ और ही कार्य में लगा है और आप बोल रहे तुरंत आ जाएगा। तो वो बोलते हैं आप जाके उनको बताना कि भगवान एक सुई के छेद में से हाथी को निकाल रहे थे, तो फिर वो उनके उत्तर से आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो नारद जी आ गए वापस, तो ब्राह्मण के पास आए तो बोले आप जाके आए भगवान के पास, बोलते हैं हाँ जाके आया। तो बताया भगवान ने क्या क्या बताया, चलो भगवान ने भगवान एक सुई के छेद में से हाथी को पिरोने का प्रयास कर रहे थे। तो वो बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, तो जैसे ही वो ये बोलता है संशय, छोटे से छोटा संशय भगवान की व्यवस्था के अंदर, मतलब आप समझ लो कि आप ब्राह्मण की परिस्थिति पे हो, स्मॉलेस्ट ऑफ द डाउट, ऐसा मत सोचो कि ब्राह्मण मूर्ख था, ये दृष्टांत हम लोगों को हमारा दिमाग खोलने के लिए दिया गया है। तो अगर छोटा सा भी संशय आएगा हमको, छोटा सा भी, दैट मीन्स अभी एक जीवन और बाकी है, वी शुड बी अंडरस्टैंडिंग द वन मोर लाइफ इज लेफ्ट, स्मॉलेस्ट ऑफ द डाउट। तो ब्राह्मण को क्यों भगवान ने बोला बहुत जन्म बाकी है, अब नाराज जी को तो समझ में आ गया, उसको बताया अभी बहुत जन्म बाकी है, सो ही वॉज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं होता है। फिर उसके पास जाते हैं मोची के पास और मोची को जब बताते हैं कि भगवान सुई के छेक में से हाथी को निकाल रहे थे, तो वो सुन के बोला कि देखो मेरे प्रभु कितने ना दिव्य कार्य हैं इनके। तो नारद जी बोलते हैं क्या बोल रहे हो तुम, बोले हाँ मेरे प्रभु कुछ भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट वो भगवान के गुणगान करना शुरू करता है, बोले भगवान क्या ये वट वृक्ष होता है बनियान ट्री, वट वृक्ष, उसके छोटे से बीज में से एक नया वट वृक्ष निकल सकता है, एक एक फल के अंदर हजारों बीज होते हैं और वो हर एक बीज में से एक वट वृक्ष निकल सकता है। तो बोले मेरे प्रभु तो कुछ भी कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वंडरफुली द क्रिएशन इज डिजाइंड बाय द लॉर्ड, इतना सुंदर तरीके से भगवान ने निर्माण किया है इस सृष्टि का। लेकिन हमारे लिए संदेश यह है कि सृष्टि सुंदर तो है, स्वयं चलायमान है, लेकिन हमारा संशय क्यों नहीं जा रहा है, दैट इज द हुक फॉर अस, व्हाई वी आर नॉट स्टॉपिंग टू डाउट इन द क्रिएशन। इसीलिए बार बार अवतार बताए जाते हैं, ओहो कौन सा ये, दिस इज बोर इनकार्नेशन, नदी के अंदर घुस गए और पृथ्वी को बचा के ले आए, इससे क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है हमको, व्हाट इज द मैसेज, मैसेज तो यही है कि भगवान अनंत हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट देन व्हाट, तब हमको क्या करना है, हमको क्या करना है। तो जो व्यवस्था दी गई है हमको उसमें विश्वास बढ़ाना है, आधो श्रद्धा, द फर्स्ट स्टेप इज टू इंक्रीज द फेथ इन द लॉर्ड, प्रथम स्टेप है वो, अभी उसमें ही मोस्ट ऑफ अस आर स्टक, हम लोग सोचते हैं कि मैं तो बहुत आगे चला गया हूं, अच्छा है ये सोचना, लेकिन वास्तव में उधर भी हमको संघर्ष है अभी, कि भगवान की जो व्यवस्था है वो पूर्ण है, जैसे पूर्ण है मतलब वन प्लस वन इज वन एंड वन माइनस वन इज वन, दिस इज स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स. हम क्या बोलते हैं, वन प्लस वन बोलेंगे तो बोलेगा टू है, और वन माइनस वन वन, और वन माइनस वन इज ऑल्सो वन वन. बट हमको वन प्लस वन पूछेंगे तो हम टू बोलेंगे, और वन माइनस वन जीरो. बट शून्य तो कुछ है नहीं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारी ने, तो देर इज नथिंग शून्य. बट ये दुनिया तो शून्य पे ही चल रही है, हर हमेशा डर डर भय, हाँ ये होएगा वो होएगा. सोचो आप डर से ही कर रहे हैं सब कुछ, एवरीथिंग इज आउट ऑफ फियर, नथिंग इज आउट ऑफ लव. गोपियों को तो डर ही नहीं था, भगवान ने बांसुरी बजाई और क्या किया, भागी, दे इमीडिएटली स्टार्टेड रनिंग मिडल ऑफ द नाइट, नो प्रॉब्लम. कौन क्या सोचेगा क्या बोलेगा, हाँ लोग क्या करेंगे बाद में, कोई हमको रखेगा नहीं रखेगा. Oh, I forgot the phone. So, but I have this. Sorry, I have Bhagavatam. So, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इसको समझें, और जब तक ये श्रद्धा बढ़ाएंगे नहीं तब तक ये विभिन्न अवतार, भगवान क्यों अवतार ले रहे हैं, ये भी तो एक प्रश्न है. क्या बार बार नया नया अवतार, इतना सारा बोलते जितना जितना वेव्स है उतना होता रहे, जरूरत क्या है इसका जब एक ही भगवान है तो. Why सो मच कंफ्यूजिंग थिंग्स, क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे. इतना करने के बाद भी हम सोच रहे हैं हम हमारी व्यवस्था बनाएंगे कुछ बेहतर, समथिंग बेटर देन व्हाट इज गिवन. ये हमारा जो टकराव कर रहा है चेतना भगवान की व्यवस्था से, इसलिए भगवान बार बार आते हैं याद करवाने. प्रभुपाद नहीं बार बार एक ही प्रवचन, हम शरीर नियम आत्मा है, हम शरीर नियम आत्मा है, हमसे वक्त बोलो कितनी बार, वो अभी तुमको समझ में ही नहीं आ रही चीज, तो आगे कैसे बढ़े. सो कृष्ण इज अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन कमिंग बैक जस्ट टू एस्टेब्लिश. क्यों भगवान क्यों अवतरित होते हैं, क्या बताया भगवदगीता में, अवतरित होने का तो एक ही कारण है. क्या कारण है, भक्तों को परित्राय साधु नाम रक्षा करने के लिए, विनाशाय दुष्कृताम दुष्टों का नाश करने के लिए, धर्म संस्थापन अर्थ है धर्म की स्थापना करने के लिए. तो ऐसा नहीं राम कुछ और कारण से आए थे, कृष्ण कुछ और कारण से आए, वरा कुछ और कारण से आए, मत्स्य अवतार कुछ और कारण से हुआ था, सभी का कारण एक ही है, सेम रीजन. बट वाई सो मेनी पास्ट टाइम्स इज डूइंग देन, फॉर व्हाट, वन कृष्ण पास्ट टाइम, वन चैतन्य महाप्रभु पास्ट टाइम इज इनफ. वाई सो मच वी हैव टू रीड, व्हाट इज द रीजन टू डेवलप दिस फेथ. ये श्रद्धा को बढ़ाते जाना है धीरे धीरे, हर एक लीला से यही समझाया जा रहा है कि श्रद्धा बढ़ाना है. तो ये तो हो गया थियोरेटिकल एस्पेक्ट, हाँ कि भी श्रद्धा अब बढ़ाएं कैसे इसको. यस, सो बहुत अच्छा उत्तर दिया कि निरंतर प्रयास करना होगा. क्या प्रयास करना है, उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल क्या करेंगे, वो हमारे एक्शन क्या होंगे वो समझना होगा. व्हाट इज अवर एक्शन फॉर दैट. मैं समझ गया, तो आपका उदाहरण यही बोल रहा है कि प्रयास करना है, बट प्रयास क्या चीज के लिए करना है, व्हाट इज दैट एक्शन. जैसे अर्जुन है, अर्जुन भी प्रयास कर रहा था, अर्जुन ने क्या बोला, युद्ध नहीं करूंगा मैं. तो युद्ध नहीं करना प्रयास नहीं था, युद्ध करना प्रयास है. तो मामनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते करते युद्ध करो. तो ये हमारे लिए क्या कार्य है, वो क्या कार्य हमको करना है कि जिससे, कौन बोल रहा है चैंटिंग, ओके वेरी गुड थैंक यू. तो चैंटिंग निरंतर सततम कीर्तयंतो माम, हाँ ओनली चैंटिंग एंड सततम. सततम मीन्स दो घंटा दिन में, दो घंटा ना लेकिन है 24 घंटा प्रभु, 24 घंटा 24 घंटा बोल रहे हैं. ओके 24 घंटा ठीक है. सो एवरीबडी इज एग्रीइंग टू 24 आवर चैंटिंग. सो Now, are we doing it? That is the next question. So, हम तो 24 घंटा अभी हमारा व्यक्तिगत रूप से बोल रहे हैं, हम तो नहीं कर पा रहे हैं 24 घंटा. It's not possible. हाँ but जब जग रहे होते तब नहीं चलता है, problem वहां है. नींद में तो चलता है लेकिन जगते हुए नहीं चलता है, क्योंकि नींद में समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है. जगते समय समझ में आता है तो और बहुत कुछ करते हैं। द पॉइंट इज 11वें स्कंद में प्रैक्टिकली समझा रहे हैं एक जगह उद्धव जी को कि हमको हर एक जीव को प्रणाम करना सीखना होगा। तो मैं आज सुबह चर्चा कर रहा था एक भक्त से कि भैया आप जब न्यू भक्ता प्रोग्राम में जुड़े तो क्या सिखाया था, प्रणाम क्यों करना चाहिए, वाई शुड वी पे ओबेसेंसेस टू डिवोट। हाँ एक सेकेंड, वी विल टेक लेटर। सो प्रणाम करने का उद्देश्य क्या है, मैं इधर बैठा हूं ऊपर तो मैं सीनियर हूं इसलिए सब प्रणाम करोगे, इज दैट द ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रणाम, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड पेइंग ओबेसेंसेस, हम प्रणाम क्यों करते हैं। हर एक जीव को प्रणाम करने का उद्देश्य एक है कि ये शरीर भगवान का मंदिर है और इसमें परमात्मा विराजमान है, सो वी आर पेइंग ओबेसेंसेस टू द लॉर्ड। पंडित समदर्शी ना, तो वही उद्धव जी को वही, ये कम से कम इसके 100 से ज्यादा श्लोक होंगे इसके ऊपर भागवत धर्म के अंदर, भगवत गीता के अंदर, कि हमको समदर्शी बनना होगा। समदर्शी का अर्थ है पेइंग रेस्पेक्ट टू ऑल, बट हमारी समस्या तो अभी क्या है, हम एक दूसरे में ही उलझे हुए हैं अभी, अन्य जीव तो बाद में नंबर लगेगा। हमारे में कैटेगरी है वो इस एफरन प्रभु जी हरे कृष्णा इज जूनियर, यू शुड लिसन टू मी, आई विल नॉट लिसन टू यू। ये द्वंद्व, ये कंडीशनिंग जो है ऊंच नीच, दिस कंडीशनिंग इज द डिटरेंट टू अंडरस्टैंड द लॉर्ड। भगवान ने ऐसा कुछ बनाया नहीं है, द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। तो वी हैव टू, ठीक है, वी नो हाउ टू रिलेट, बट दैट पेइंग ओबेसेंसेस इज रिकमेंडेड टू डॉ, वो श्लोक मेरे पास अभी मुझे नंबर भूल गया हूं, बट इट इज इन 11th कैंटो। तो कुत्ते को भी प्रणाम करना है, गधे को भी प्रणाम करना है, तैयार हो? ये भागवतम में है लिखा है, तो तैयार हो? सी सो डिफिकल्ट, कुछ मना नहीं किया है, नो वेर इट इज सेड, नो। सो फिर उसमें ये लिखा है, वो श्लोक में ये भी लिखा है कि देहात्म भाव से मुक्त होने के लिए ये करना है। अभी देहात्म भाव कैसे आया इसमें, जैसे हमारे दिमाग ने क्या बोला, मना भी करना है, ये क्यों आया, क्योंकि हम जब कुत्ते को प्रणाम करेंगे तो लोग हंसेंगे हमारे ऊपर, हमारे दिमाग में ये आ रहा है अभी। लेकिन अगर हमारी चेतना क्लियर है कि हर एक जीव में भगवान का वास है और मैं उस भगवान को प्रणाम कर रहा हूं, तो शायद हम पूरी दुनिया को आकर्षित कर सकेंगे इसके लिए। ये सिद्धांत है, तो सिद्धांत जो भी है वहां तक हमको पहुंचना है। अभी हम सब इधर हैं, कोई इसमें हताश होने की बात नहीं है, दैट हमारी चेतना थोड़ी अभी शिथिल है, वो तो सभी की, सभी को समस्या तो है, बट वी कैन नॉट रिजेक्ट दिस प्रिंसिपल। इस सिद्धांत को हम तिरस्कृत नहीं कर सकते हैं, वी कैन नॉट डू दैट। जैसे कौन थे वो चैतन्य लीला में जो जीव उनके शरीर से गिर रहे थे, वासुदेव दत्ता। सो ये दृष्टांत क्या सिखा रहा है हमको कि वो हर एक जीव को सम्मान कर रहे हैं, और क्योंकि उसका वहां भोजन मिल रहा है, वो उसको मारना नहीं चाह रहे थे वो, ये तो देखा है हमने। फिर मुर्गारी, राइट, जब उसको समझ में आ गया नारद जी के संघ के माध्यम से, तो वो तो चींटी को भी परेशान नहीं करना, हम बोलते हैं चींटी को भी नहीं मारेंगे, तो व्हाट डज दैट मीन, क्योंकि उसमें भगवान है, दैट इज द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल इज दैट। सिद्धांत ये है कि उसके उसमें भगवान का वास है, तो अब हमको समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे, वी कांट कंसीव दिस, हर एक के अंदर छोटी चीज बैक्टीरिया, अभी जर्म थियरी चलता है, तो बैक्टीरिया को हम शत्रु गिन रहे हैं, तो क्या बैक्टीरिया में भगवान नहीं है, है कि नहीं है? है, तो भगवान ने कुछ भी संरचना ऐसी नहीं की है कि उन्होंने हमारे शत्रु बनाए। भगवान की भगवत गीता में हमारे शत्रु कौन है, और बेसिकली मन, दैट इज द रूट कॉज, रूट एनिमी इज माइंड। तो हम मन से सोचते हैं कि ये भक्त मेरी ईर्ष्या कर रहा है, ये सब तो मन सोच रहा है सब, तो फिर उसके साथ हम द्वेष शुरू कर देते हैं, तो शत्रु तो मन ही है। तो मन के माध्यम से हम भगवान से द्वेष कर रहे हैं अगर सूक्ष्म रूप से सोचा जाए तो, क्योंकि हर एक जीव में भगवान का वास है और हर एक की शक्ति जो भगवान से आती है, हर एक व्यक्ति जो कार्य कर रहा है भगवान की अध्यक्षता में कर रहा है, माया दक्षिण प्रकृति, एवरी सिंगल थिंग इज हैपनिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ द लॉर्ड। ये अर्थ होता है ना माया दक्षिण प्रकृति सूयते, व्हाट डज दैट मीन, कि जो 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 हमको पसंद नहीं है वो किसी और की अध्यक्षता में हो रहा है और जो हमको पसंद है वो भगवान की अध्यक्षता में हो रहा है, ऐसा इसका मतलब होता है। डज दैट मीन लाइक दिस, अगर आज कुछ ऐसा हो गया जो हमको पसंद नहीं है मतलब इसमें भगवान का कोई रोल नहीं है, ऐसा थोड़ी सोच सकते हैं हम। एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द सुप्रीम लॉर्ड, हमको पसंद है या नहीं है, वी विल टेक दैट, कृष्णा लेंगे आपके। थैंक यू। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है समझने के लिए कि हर एक जीव में भगवान का वास देखना, इसलिए भगवान ने हर एक जीव में अवतार लिया, मत्स्य अवतार ले लिया, मतलब पानी के जीव में कुर्म, ये बोर इनकार्नेशन, राइट, बोर। अभी बोर को बहुत बड़ी समस्या है, अभी रिसेंटली केरला गवर्नमेंट बोर को क्या बोलते हैं हिंदी में, सुअर, तो उसको बैन कर दिया है, बोर को मारने का ऐसा परमिशन कर दिया है केरला गवर्नमेंट ने कि अगर ये बोर खेत में आता है तो इसको मार दो, सम डिसीजन दे हैव टेकन दैट यू कैन किल द बोर। एंड व्हाई दे हैव टेकन दिस डिसीजन, बिकॉज ही इज डैमेजिंग द फील्ड्स, वो खेत को खराब करता है आगे, तो खेत मतलब धरती माता, तो यहां तो धरती माता की रक्षा कौन करने गया है, तो पूरा शास्त्र से विपरीत है, आप समझ रहे हो। तो हम क्या सोच के बैठ गए हैं, भगवान ने ये पशु इसलिए बनाया कि हमको परेशान करे, दिस इज अवर डिसीजन, दैट इज वाई वी हैव डिसाइडेड टू किल दैट बोर, दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज, अभी दुनिया ऐसी ही चल रही है, हमको समझ में नहीं आता है सृष्टि में क्या कैसे हो रहा है और हर एक जीव में भगवान का वास है इसलिए हम उसको मार रहे हैं। तो इतना छोटा सा बात भी समझ में नहीं आएगा तो अनंत भगवान को कैसे समझेंगे हम, बट दिस इज द प्रैक्टिकल स्टेप टू अंडरस्टैंड, ये प्रैक्टिकल स्टेप है समझने के लिए कि हर एक जीव में भगवान को दर्शन करना सीखना पड़ेगा, वी हैव टू स्टार्ट लुकिंग लाइक दैट। ये तो जो हमको मानसिकता अभी मिली है उसी मानसिकता से हम जीवन जिएंगे तो हम ये माला 24 घंटे के स्तर पे पहुंच ही नहीं पाएंगे, इट इज वेरी डिफिकल्ट। हम हमारा प्रयास है, हम चाहते हैं करना और वही माध्यम है, वो गलत नहीं, दैट इज द राइट वे, बट उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, 2-3 घंटे में थकान क्यों हो जाती है, मन क्यों नहीं लग रहा है उसके अंदर, उसको तो सोचना पड़ेगा हमको। उसी के लिए ये अलग अलग तरह के रूप से हमको समझाया जाता है कि कैसे शरण लें। तो अगर इसको प्रैक्टिकल, सम प्रैक्टिकल एक्शन हैज टू बी टेकन, थियरी तो चर्चा कर रहे हैं लेकिन जीवन में तो कुछ परिवर्तन लंबा चौड़ा कर नहीं पाए हैं, अभी भी यही सोच रहे हैं कि भाई वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, मैं ऐसा हूं, मैं बहुत बेटर हूं, यू नो। सो लाइक सम डेज बिफोर जयदेव महाराज वॉज टेलिंग दैट इफ यू थिंक दैट यू आर द लोवेस्ट देर इज नो पॉसिबिलिटी टू फॉल डाउन, अगर आप सोचते हो कि आप सबसे छोटे हो तो गिरने की जगह कहां है अब, लेकिन वो सोचना ही कठिन है, तो उसको सोच लाने के लिए ये जरूरत है कि हर एक जीव को प्रणाम किया जाए, दैट इज अ प्रैक्टिकल स्टेप वी आर टॉकिंग, दैट इज अ प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन इन द भागवतम गिवन टू अस व्हाट वी शुड डू टू अचीव दैट। तो जब ये करते हैं तो हमारा जो अहंकार है नष्ट होता है, वो हमारा देहात्म भाव है वो नष्ट होता है, स्टेप बाय क्रमश है ये सब धीरे क्रमशः, फिर मन नियंत्रण में अधिक आएगा, यू नो चैंटिंग तो हम कर रहे हैं बट उसको बढ़ाना है ना आगे, सततम के स्टेज पे पहुंचना है, हाँ सोते जागते नहीं, नींद ही नहीं आए हरे कृष्ण मंत्र जपते हैं तब, ऐसे तो थे गोस्वामी, सो वी कैनॉट थिंक दैट देर आर सम पर्सनैलिटीज विच नाउ कैनॉट रिपीट, इट इज पॉसिबल इफ वी आर सिंसियर, हम कर सकते हैं करना चाहें तो, लेकिन इसके लिए प्रयास करना होगा। तो इसके लिए प्रैक्टिकल स्टेप इज टू पे ओबेसेंसेज, दैट इज वन ऑफ द स्टेप, और देहात्म भाव से इससे बाहर आ पाएंगे आप, इसको तुरंत अनुभव कर पाओगे, दासत्व का भाव आपके अंदर जागने लगेगा, जब हर एक प्रभु, व्हाट डज प्रभु मींस, हम प्रभु क्यों बोलते हैं एक दूसरे को, कोई वो डेजिग्नेशन ओहदा है, ये एक डेजिग्नेशन है, ये दिस इज नॉट अ डेजिग्नेशन, दिस मींस दैट आई एम सर्वेंट यू आर मास्टर। तो मूड चाहिए, चेतना ऐसी बनानी होगी, इसको थियोरिटिकल नहीं करना है कुछ भी हमको, Krishna consciousness is very scientific and practical religion. We are not in some theory of dogmatic rules and principles. हमारा वो उद्देश्य ही नहीं है. हम चेतना को परिवर्तित करने के लिए इस विधि से जुड़े हैं. तो हर एक चीज में चेतना लानी होगी, चेतना को जोड़ना होगा, तब भगवान की उपस्थिति हर हमेशा होगी. अगर चेतना में भगवान नहीं है, जैसे हर बार हम चर्चा करते भोग बना रहे हैं, तो हमको सोचना है किसके लिए बना रहे हैं. नॉट दैट आज तीन भक्त घर पे आ रहे हैं और उनको कुछ खिलाना है. दैट इज नॉट द प्रोसेस वी हैव टू फॉलो. अवर प्रोसेस इज टू फीड द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड. दैट इज अवर प्रोसेस. परम भगवान को हम अर्पण करने जा रहे हैं कुछ, उस चेतना से तब वो स्वच्छता रहेगी, तब वो चेतना रहेगी, तब स्मरण में कृष्णा रहेंगे, तब हम कृष्णा के बारे में सोचेंगे. नहीं तो हमारे विचार तो ऑलरेडी जो संसार से मिले हैं वो बड़े उग्र विचार मिले हुए हैं हमको. वी कैन नॉट बी बिहेविंग लाइक दैट, नॉट पॉसिबल. सो ये प्रैक्टिकल स्टेप हम सोच सकते हैं, हमको लेना चाहिए. और जितने भी निर्णय हम रोज लेते हैं वो निर्णय इस अनुसार लेना चाहिए. अभी हम आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चार चीजों को प्राप्ति हेतु निर्णय लेते रहते हैं. ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, एंड दिस इज वाई एवरी मोमेंट वी हैव टू थिंक फॉर दिस. एंड और कुछ ना कुछ निर्णय हम लेते हैं, तो वो निर्णय हमको कृष्णा की ओर ले जा रहा है या नहीं वो तो सोचना होगा. या उस निर्णय में हम अन्य जीवों को रेस्पेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. अगर अन्य जीवों को हम रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं वो हेतु प्राप्त करने के लिए, तो फिर हमको भगवान की उपस्थिति अनुभव नहीं होगी कभी भी. तो जो हमारा कार्य है आहार, निद्रा, भय और मैथुन, उसके अंदर जो भी हम एक्शन लेते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उसमें निर्णय लेने के पहले सोचना होगा कि हम अन्य जीवों को क्षति पहुंचा रहे हैं या नहीं पहुंचा रहे हैं. यू हैव टू बी कॉन्शियस. इसीलिए परम भगवान गोचारण करते थे. तो परम भगवान कृष्ण क्यों अवतरित हुए? गायों को चराने के लिए. क्योंकि वो ही एक कार्य है जो मनुष्य समाज के लिए है, प्रैक्टिकल करने के लिए. नंद बाबा क्या करते थे, क्या कर रहे थे ब्रजवासी लोग, क्या कर रहे थे? हाँ, हम क्या कर रहे हैं ब्रजवासी? हम लोग खुद को भी ब्रजवासी बोलते हैं लोग, है हमको वो देखते बाबू आप तो ब्रजवासी हो गए हो अभी, ऐसा बोलते हैं लोग. हमको बहुत लोग बोल रहे हैं, मुझे तो 15 महीना हो गया अभी लोग बोलने लगे हैं ऐसा. इधर तो आप लोग तो काफी समय, लोग बोलते हैं ना ब्रजवासी हो गए, पर हम तो ब्रजवासी का कोई कार्य कर नहीं रहे हैं. वी आर नॉट डूइंग बट गोपीज वी आर डूइंग. तो वो क्यों कर रहे थे वो समझना होगा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन वी कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस इनकार्नेशन ऑफ द लॉर्ड. तभी भगवान के अवतार को समझ पाएंगे. हर एक कार्य के पीछे कुछ ना कुछ हेतु है, वो हेतु समझना होगा. तो क्यों भगवान कर रहे थे गोचारण? क्योंकि गोचारण के माध्यम से हर एक जीव को भगवान भोजन देते हैं. अभी वैज्ञानिक लोग भी इसको स्वीकार कर रहे हैं कि अगर गाय चरती नहीं है तो सब योनि भूखी रहती है. 84 लाख योनि की बात हो रही है अभी. They are talking about all 84 lakh species. अगर गाय चरेगी तभी सबको भोजन मिलता है, ऐसा वैज्ञानिक लोग बोल रहे हैं. अब हम क्या सोचते हैं, कृष्णा के पास कुछ करने के लिए नहीं था इसलिए गाय चराता था. मैं तो बहुत बिजी हूं, मैं कैसे कर सकता हूं, मेरे पास तो बहुत मैनेजमेंट करने के लिए है, हा? तो मैं कैसे करूंगा ये कार्य. बट भगवान तो कर रहे थे. तो ये पूरा एक डिटेल्ड साइंस है कि क्यों भगवान ये कर रहे थे. इट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और भगवान हमको जीवन शैली सिखा रहे हैं कैसे एक आदर्श जीवन जीना है. एक जगह लिखते हैं भागवतम में प्रभुपाद, इसी स्कंद में आएगा, हाँ, अठम स्कंद छठा अध्याय श्लोक संख्या 12, हाँ, इसमें ही है. लेट मी रीड. गुड, वी हैव दैट कैंटो इन हैंड. इसके अंदर प्रभुपाद लिखते हैं 8, 6, 12 में, बहुत बड़ा तात्पर्य है, हम उसमें से 2-3 पंक्ति पढ़ेंगे केवल. Sorry, I don't know where it is, but तो उसमें ऐसा लिखा जा रहा है, इसमें मुझे मिल नहीं रहा है अभी, बहुत 3 पेज का परपट है वो. इसमें ऐसा लिख रहे हैं प्रभुपाद कि कृषि, गोसेवा और खेती किए बिना हम पाप रहित जीवन नहीं जी सकते हैं. ऐसा लिखा इसमें लिखा है कि अगर आप कृषि और गोसेवा के इसमें संलग्न नहीं है तो आप पाप रहित जीवन नहीं जी सकते हैं. और अगर आप इस प्रकार से जीवन जिएंगे तो आप भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं. आई विल फाइंड आउट. तो बट आप पढ़ सकते हैं 8, 6, 12 में ये लिखा है कहीं ना कहीं. तो तो इससे क्या समझा रहे हैं भगवान कि हमको जो भगवान ने कार्य करके दिखाया है वो कार्य करने से ही हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। तो अगर हम जीवन शैली के अंदर उसको जोड़ेंगे नहीं, चैंटिंग तो हम कर रहे हैं लेकिन बाकी के समय में क्या कर रहे हैं वो भी देखना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बाकी के समय में जो भगवान ने जीवन व्यापन के लिए जो सिस्टम बनाया था उस सिस्टम को हमें फॉलो किया जाए। कैन यू फाइंड इट प्रभु 8:6:12 और इस विधि के अंदर इस प्रकार से अगर आप जीवन जीते हैं तो आप कोई पाप प्रवृत्ति नहीं कर सकते हैं। इट इज जस्ट टोटली वेयर इज दैट ओके। कृषि तथा गोरक्षा निष्पाप होने के साधन हैं और इनसे भक्ति के प्रति आकृष्ट हुआ जा सकता है। जो लोग पापी हैं वे भक्ति के प्रति अनुरक्त नहीं होते। एकदम स्पष्ट लिखा है। तो जीवन व्यापन के लिए दो कार्य दिए थे और यही ब्रजवासी कर रहे थे लेकिन हम लोग तो इसको नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए अभी मंदिर में ये व्यवस्था खड़ी की जा रही है कि भक्त लोग इसके अंदर जुड़े। नहीं तो क्या है, हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हम अन्य जीवों की उपस्थिति का अनुभव नहीं कर पाएंगे और जब उनको हम सम्मान नहीं देंगे तो भगवान के सिस्टम को रिजेक्ट कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं इंपॉर्टेंट हूं भगवान के लिए, मनुष्य हूं इसलिए, अन्य जीव भगवान के लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं है। भगवान तो सभी के परम पिता है, हर एक जीव के। तो ये जो भेदभाव जो द्वंद्व हमारे दिमाग में है उससे हमको बाहर आना पड़ेगा और उसको आने का रास्ता ये है। प्रैक्टिकल, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल एक्शन प्लान। ये व्यवहारिक रूप से हम कर सकते हैं और करना ही चाहिए क्योंकि हमारे संस्थापक आचार्य ये चाहते थे हमसे कि हम ग्रामीण समुदायों का विकास करें और उसमें हम इस चीजों को अनुभूति कर सकते हैं। तो अभी जो वर्तमान व्यवस्था चल रही है पूरी दुनिया में वो तो केवल हर एक योनि को क्षति पहुंचाने के लिए है। तो आप किसी को क्षति पहुंचा के खुद का लाभ कर लोगे ये तो दृष्टिकोण ही गलत है, तो असंभव है, तो असंभव है। तो जितने भी महाप्रभु के भक्तगण थे वो सभी लोग इस बात को उपस्थित थे, वो कभी जीव हिंसा में नहीं थे। लेकिन अभी हमारा जीवन शैली ऐसा हो गया है समाज का कि उसमें हिंसा ही चल रहा है। तो पंडित समदर्शी ना हर एक को समान दृष्टि से देखना ये अनिवार्य है और हमारे पास कोई योग्यता नहीं है ये समझना ही भक्ति की सबसे बड़ी योग्यता है। तो तथाकथित रूप से विनम्र बनते हैं, दंडवत दंडवत दंडवत, बट चेतना में परिवर्तन चाहिए, हृदय को परिवर्तन करना है। सही में हम ये भाव को अंगीकार कर रहे हैं कि ये मेरे प्रभु हैं और ये जो मुझे बोल रहे हैं वो मुझे करना है, इससे शुरुआत कर सकते हैं हम और इसको धीरे धीरे विस्तारित कर सकते हैं। आई थिंक समय हो गया है। धन्यवाद सबका, आपने समय निकाला। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय।